नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वारसा में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने त्रिपुरा में गोमती नदी पर बांध खोलने के कारण बांग्लादेश में बाढ़ की खबरों को खारिज किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कहा, आतंकवाद शांति और विकास के लिए वैश्विक खतरा, आतंकवाद की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का सुझाव। दिल्ली पुलिस ने अलकायदा के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, 3 राज्यों से 14 लोगों को हिरासत में लिया। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक नई दिल्ली में शुरू। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किए। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वारसा में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे और कई मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वारसा के चांसलरी में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क भी मौजूद थे। श्री मोदी पोलैंड के राष्ट्रपति आन्द्रेज डूडा से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री अज्ञात शहीदों के मकबरे पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। वो व्यवसायियों और महत्वपूर्ण लोगों के साथ भी बातचीत करेंगे। इससे पहले कल रात वारसा में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए भारत का निवेश करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत सभी के साथ जुड़ना चाहता है, सभी का विकास और कल्याण चाहता है। श्री मोदी ने कहा कि दशकों से भारत की नीति दूसरे देशों से दूरी बनाए रखने की रही है, लेकिन आज के भारत की नीति सभी देशों से घनिष्ठ संबंध बनाने की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का रुख स्पष्ट है कि युद्ध का युग नहीं है और भारत संघर्षों को सुलझाने के लिए बातचीत और कूटनीति में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत शांति की वकालत करता है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि दुनिया अब भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान देती है।
भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं शांति पर विश्वास करती है, और इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। ये युद्ध का युग नहीं है, इसलिए भारत डिप्लोमेसी और डायलॉग पर बल दे रहा है।
पोलैंड भारत का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत और पोलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार 6 अरब डॉलर का है। पोलैंड में भारत का निवेश लगभग 3 अरब डॉलर का और भारत में पोलैंड का निवेश लगभग 1 अरब डॉलर का है। अपनी दो देशों की यात्रा के दूसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के निमंत्रण पर कल यूक्रेन जाएंगे। 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा होगी। कीव में प्रधानमंत्री वहां के राष्ट्रपति के साथ व्यापार, निवेश, शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। भारत ने कहा है कि बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति त्रिपुरा में गुमती नदी पर बने भारतीय बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से नहीं बनी है। विदेश मंत्रालय ने आज जारी एक बयान में कहा कि बांग्लादेश में यह माना जा रहा है कि बांग्लादेश के पूर्वी सीमा के जिलों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति त्रिपुरा में गुमती नदी पर स्थित डम्बूर बांध से पानी छोड़े जाने के कारण बनी है। मंत्रालय ने इसे गलत बताया और कहा कि गुमती नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से काफी बारिश हुई है। विदेश मंत्रालय के अनुसार डम्बूर बांध बांग्लादेश की सीमा से 120 किलोमीटर ऊपर की ओर काफी दूर स्थित है। ये एक कम ऊंचाई वाला बांध है जिससे बिजली बनती है और इससे बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली भी मिलती है। मंत्रालय ने कहा कि भारत द्विपक्षीय परामर्श और तकनीकी चर्चा के माध्यम से जल संसाधनों और नदी जल प्रबंधन के मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। गृहमंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा से बात करके उनसे राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार राहत और बचाव कार्यों में राज्य सरकार की सहायता के लिए नावों और हेलीकॉप्टरों के अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमों को भेज रही है। श्री शाह ने केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार त्रिपुरा के लोगों के साथ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
अजी सुनती हो, आशा दीदी से क्या बात हुई?
उन्होंने मुन्नी को दस्त से बचाने का उपाय बताया।
क्या बताया?
6 महीने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, 6 महीने बाद उम्र के अनुसार संपूर्ण पौष्टिक आहार खिलाना है, 5 साल तक हर 6 महीने में विटामिन ए पिलाना और याद से रोटा वायरस और खसरा का टीका सही समय पर लगवाना है।
बहुत बढ़िया, दस्त के विरुद्ध हम है तैयार, क्योंकि साथ है
रक्षा, रोकथाम और उपचार।
अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के विस्तार का विरोध करने वालों और अफ्रीका को उचित स्थान देने से इंकार करने वालों की निंदा करने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रभारी राजदूत आर रविन्द्र ने कहा कि सदस्यता की स्थायी श्रेणी में अफ्रीका को प्रतिनिधित्व से लगातार वंचित रखना परिषद की सामूहिक विश्वसनीयता पर सवाल उठाना है। श्री रविन्द्र ने परिषद की शांति कायम रखने पर आयोजित उच्च स्तरीय खुली बहस में बोल रहे थे। श्री रविन्द्र ने जोर देकर कहा कि भारत ने हमेशा विस्तारित परिषद में स्थायी अफ्रीकी प्रतिनिधित्व की मांग की है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद न केवल शांति और सुरक्षा के लिए बल्कि विकास के लिए भी वैश्विक खतरा है।
Terrorism is a global threat to peace and security, but also to development. No global prevention mechanism can be complete without a comprehensive approach to counter-terrorism. We reiterate the urgent need for a comprehensive convention on international terrorism. India has always played an important role in both peacekeeping and peace-building. We have engaged in peace-building through extensive development partnership with countries in the global south.
बैठक की अध्यक्षता करते हुए सियेरा लियोन के विदेश मंत्री अलहाजी मूसा टिमोथी काबा ने चेतावनी दी कि विश्व कई अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दे इसका कारण हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में संगठन स्वास्थ्य समृद्धि पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भोजन, पोषण और स्वास्थ्य के बारे में महिलाओं की सामूहिक पहल पर केंद्रित है। श्री चौहान ने कहा कि स्वास्थ्य और पोषण देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बिना विकसित भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाएं देश की छवि बदलने के लिए समर्पित हैं। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने राजस्थान के भिवाड़ी से हथियारों का प्रशिक्षण ले रहे 6 लोगों को हिरासत में लेकर अलकायदा से प्रेरित आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इसके अलावा झारखंड और उत्तर प्रदेश से करीब 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार इस आतंकी मॉड्यूल का नेतृत्व रांची के डॉ इश्तियाक कर रहे थे और देश के भीतर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। इस सिलसिले में विभिन्न स्थानों पर पूछताछ चल रही है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हो रही है। इस समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल हैं और इसमें 31 सदस्य हैं। इस समिति को लोकसभा द्वारा विधेयक की जांच करने का काम सौंपा गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और विधि और न्याय मंत्रालय के अधिकारी सदस्यों को मौजूदा कानून में प्रस्तावित विभिन्न संशोधनों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बैठक से पहले मीडिया से बात करते हुए श्री पाल ने कहा कि विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा में अल्पसंख्यक संगठनों के अधिक से अधिक लोगों को अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को लाने का सरकार का उद्देश्य यह है कि वक्फ को सौंपी गई संपत्तियों से पिछड़े मुसलमानों और महिलाओं को मदद मिले। श्री पाल ने कहा कि समिति सभी 44 विधेयक संशोधनों पर चर्चा करेगी और संसद के अगले सत्र तक एक बेहतर और व्यापक कानून लाएगी।
पिछले दिनों जिस तरीके से लगातार कहीं न कहीं वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टीज के बारे में कि लोग बड़ी पवित्र भाव से देते थे और खुर्द-बुर्द होता था, तो आज उसके लिए एक रिफॉर्म लेके आए हैं और लगातार जो ये एक्ट रहा है उस एक्ट में अब 95 में 44 संशोधन हुए हैं। वो सभी संशोधन पे हम जेपीसी में बात करेंगे और एक अच्छा कम्प्रिहेंसिव बिल अगले सेशन तक लाएंगे।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रधानाचार्य संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग ने डॉ मानस बंदोपाध्याय को आरजी कर मेडिकल कॉलेज का नया प्रधानाचार्य और डॉ सप्तऋषि चट्टोपाध्याय को नया चिकित्सा अधीक्षक और उप प्रधानाचार्य नियुक्त किया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और कोलकाता पुलिस ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में आज सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट दायर की। शीर्ष अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने आंदोलनकारी डॉक्टरों से काम पर लौटने का आग्रह किया और कहा कि विरोध प्रदर्शन से सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में वैज्ञानिकों को वर्ष 2024 के राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों से सम्मानित किया। प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को वर्ष 2024 के विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञानश्री सम्मान डॉ आनंद रामकृष्णन को प्रदान किया गया। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में यह सम्मान भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के डॉ अवेश कुमार त्यागी को दिया गया। जीव विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञानश्री सम्मान भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान पुणे के प्रोफेसर जयंत भालचंद्र उड़गांवकर को दिया गया। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए विभिन्न पर्यवेक्षकों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉ सुखबीर सिंह संधु ने दोनों राज्यों में मतदान पर पर्यवेक्षकों को संबोधित किया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि आयोग ने पर्यवेक्षकों को उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए क्षेत्र में मौजूद रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों में चुनाव निष्पक्ष तरीके से होंगे। श्री कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों में उत्साह है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में जल स्तर कम हो रहा है, लेकिन गोमती नदी और दक्षिण त्रिपुरा जिलों में बाढ़ की गंभीर स्थिति बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
कल अगरतला पहुंची एनडीआरएफ की चार टीमों को बचाव और राहत कार्यों के लिए गोमती और पश्चिम त्रिपुरा जिलों में तैनात किया गया है। आकाशवाणी से बात करते हुए त्रिपुरा के राजस्व सचिव ब्रिजेश पांडे ने कहा कि एनडीआरएफ की चार और टीमें जल्द ही राज्य में पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि भले ही बारिश की तीव्रता कम हो गई हो, लेकिन आईएमडी का अनुमान है कि आज शाम को भारी बारिश होगी। राज्य में बारिश से संबंधित घटनाओं में मरने वालों की संख्या 12 हो गई है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया है कि केंद्र बचाव और राहत कार्यों में सहायता के लिए एनडीआरएफ की टीमों के अलावा नावों और हेलीकॉप्टरों को भेज रहे हैं। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, अगरतला।
तमिल अभिनेता और तमिजागा वेत्री कड़गम पार्टी के प्रमुख विजय ने चेन्नई में अपनी पार्टी के झंडे का अनावरण किया है। आज से अपनी राजनीतिक यात्रा की घोषणा करते हुए श्री विजय ने जाति और धर्म के नाम पर मतभेदों को दूर करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का पहला सम्मेलन सितंबर में विक्रवांडी में होगा, जहां हाल ही में उपचुनाव हुआ था। असम में राज्य मंत्रिमंडल ने मुस्लिम निकाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 और नियमावली को निरस्त करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। अधिनियम में विशेष शर्तों में अल्प आयु में विवाह की अनुमति दी गई थी। राज्य मंत्रिमंडल ने इस वर्ष के आरंभ में ही इस अधिनियम को समाप्त करने का फैसला किया था। बैठक में अधिनियम को निरस्त करने के लिए विधेयक लाने की मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम की बेटियों और बहनों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए बाल विवाह के विरुद्ध महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज रात स्विट्जरलैंड में प्रतिष्ठित लुसाने डायमंड लीग में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भाग लेंगे। 26 वर्षीय नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक जीतने के बाद इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वारसा में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने त्रिपुरा में गुमती नदी पर बांध खोलने के कारण बांग्लादेश में बाढ़ की खबरों को खारिज किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कहा, आतंकवाद शांति और विकास के लिए एक वैश्विक खतरा, आतंकवाद की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का सुझाव। दिल्ली पुलिस ने अलकायदा के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, 3 राज्यों से 14 लोगों को हिरासत में लिया। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।